नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
भगवान श्री राम श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी एवं श्री हनुमान जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं उनकी गाथा जो पूर्व से ही रामायण में कही गई है कहने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि गावहि सुनहि संता, भगवान की कथाएं अनंत हैं और बहुत प्रकार से महात्माओं ने संतों ने इसका गान किया है, उसका कई प्रकार से वर्णन किया है। भगवान के अवतार के अनेक कारण एक साथ ही उपस्थित हो जाते हैं और उद्देश्य भी भगवान के अवतार के अनंत प्रकार के होते हैं। इस जगत में श्री भगवान का अपने धाम से आना समस्त जीवों के लिए हित के लिए होता है और श्री भगवान ने स्वयं ही भगवद गीता में कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। ये बानर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप घूमता है, आप लोग डरिए मत। संस्कृत में इसको कपि कहते हैं। कपि का अर्थ होता है कंपयति इति कपि, जो कंपा दे उसको कपि कहते। एक बार देखने के पर जी कांप जाता है। लगता है हनुमान जी का आवेश इसमें रहता होगा तो भगवान का कीर्तन भगवान की कथा सुनता रहता होगा। तो भगवान ने कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो यहां पर इस प्राकृत जगत में भगवान का अपने धाम से आना सबके हित के लिए होता है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान का आना पसंद नहीं पड़ता। लोग तैयारी करते हैं कि भगवान न आने पावे हैं, जैसे कंस। कंस बहुत तैयारी किया कि भगवान यहां न आ पाए, नहीं तो ख फलों के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ आते हैं तो भगवान बहुत मारते हैं, खास करके राजाओं को। जो बदमाश राजा होते हैं उनका वो वध करते हैं या करा देते हैं, बहुत सुंदर राज्य की स्थापना करते हैं। भगवान श्री राम तो कुछ देर के बाद वध करना चालू किए, भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे उसी दिन से चालू कर दिए, पूतना का वध किया उन्होंने। और पूतना क्या थी, पूतना राक्षसी जो बच्चों को मारा करती थी, अपने स्तन में जहर लगा लगा करके बच्चों को मारा करती थी। बताइए बच्चे क्या अपराध किए हैं, लेकिन ऐसे मासूम बच्चों को दूध पिला करके, माँ का भेष बना करके, गोपी का भेष बना करके जाती थी, मारती थी। और भगवान श्री कृष्ण को भी उसने ऐसा करना चाहा, परंतु भगवान तो भगवान है, उन्होंने इस प्रकार उसके अस्तनों को दबाया कि वो छटपटा करके मर गई वहीं पर। यह भगवान की विशेषता, अपना स्वभाव स्वरूप है। भगवान भले बालक की लीला करें या विश्व रूप धारण करके लीला करें, कुछ भी करें, भगवान तो भगवान है। तो इस तरह से भगवान ने असुरों का वध किया। कई लोगों को तो आना पसंद नहीं है भगवान का, और आते हैं तो उनका कर्म पसंद नहीं पड़ता है, तो खलबली मच जाती है। जितने दुष्ट और गुंडे इस संसार में हैं सब घबरा जाते हैं कि अब तो ये आ गया, अब तो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए भगवान का एक मिशन है, विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कर्मियों का नाश करके करने आते हैं, इसको भगवान कहते हैं। जिसमें अनंत शक्ति है, जो चाहता है करना कर लेता है। वास्तव में वन में स्वयं भगवान जाना चाहते थे, इसलिए भरत जी जब नलिहाल गए तो इधर सबके हृदय में प्रेरणा करके और भागे वन में। तो भरत जी रहते तो जाने नहीं दिए होते वन में, वन में जाना चाहते थे। बहुत बड़ा काम था, और मुख्य काम था विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कर्मियों का विनाश। यही संसार के सुख के लिए बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। हाथ जोड़ने से दुष्कर्मी मानते नहीं है, ऐसे भगवान प्रयास करते हैं। देखिए पांडव और कौरवों की संधि के लिए भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, 2 न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं ठीक है 5 शहर दे दो, 5 गांव, उसमें 5 पांडव रह लेंगे, रखो अपनी धरती। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, दुर्योधन वह नहीं कर सका। और यहां तक कहा कि श्री कृष्ण सुनो, सुई की नोक से जितनी जमीन छेदी जाती है उतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। और उसके बाद युद्ध हुआ, 18 दिन में सारी पृथ्वी छोड़कर चला गया, 18 दिन युद्ध हुआ था। लंका में भी 18 दिन युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र में भी 18 दिन युद्ध हुआ था। बस 18 दिन में शरीर भी छोड़ करके और धन घर आदि की बात तो दूर ही रहे, चले गए। भगवान इस तरह कार्य करते। अर्जुन और भीमसेन में ये शक्ति दे करके उन्होंने अनेक राजाओं का वध करा दिया कुरुक्षेत्र में। भगवान ऐसे नहीं है कि आकर के हाथ जोड़े और उनको ही सूली पर चढ़ा दो, इसको भगवान नहीं कहते। भगवान में अपार शक्ति है, अपार बल है, ये समझना चाहिए। भगवान कौन है इसको पहचानना चाहिए। वैसे केवल उदारतावाद के नाम पर कह देना कोई भी भगवान है, कोई भी पंथ ठीक है, यह वास्तव में बुद्धिहीनता है। ये प्रॉपर बुद्धि नहीं है। उदार बुद्धि का मतलब होता है आर मतलब बंधन, ऐसे देहात में आर शब्द का प्रयोग होता है, खेत की मेड़ को आर कहते हैं, और उत का अर्थ होता है ऊपर। साधारण धारणा से, साधारण स्टैंडर्ड से परे जो व्यक्ति उसको उदार कहते हैं। भगवान की लीलाएं उदार हैं, भगवान की शक्ति उदार है, तो किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब सूर्पणखा का नाक कान कट गया तो रोती हुई गई वहीं पर निकट जन जन नाम का स्थान था, जहां उसके नाता में तीन भाई रहते थे। वो भी भाई लगते थे लेकिन खास भाई नहीं थे, खर, दूषण और त्रिशिरा। उनसे जाकर के रो रो करके कहने लगी कि दो लड़के आए हैं अयोध्या से, तो दूसरा लड़का जो गोरा लड़का है एक नंबर का बदमाश है, उसी ने हमारी नाक कान काट दी। तो वो लोग विचार नहीं किए कि क्यों घूमती है फ्री लड़की इधर उधर, क्यों घूम रही है। तो वो लोग बदला लेने के लिए आए राम से लड़ने के लिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि सुनो लक्ष्मण, सीता को लेकर के कहीं तुम ओट में हो जाओ, छिपा लो, ये लोग आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर के तीनों भाई आए, और भगवान श्री राम ने ऐसा किया। ऐसा अद्भुत भगवान की माया है, उनमें से प्रत्येक को यही अनुभव हो रहा था कि ये राम हमसे युद्ध कर रहा है। सब राम के रूप में दिखाई दे रहे थे, एक राक्षस खड़ा है तो देख रहा है कि ये राम हमारे साथ खड़ा है और हमसे लड़ रहा है, दूसरा देखता है वो राम खड़ा है, सभी को राम के रूप में प्रतीति हो रही थी एक दूसरे को, और वे आपस में ही लड़ करके खत्म हो गए। भगवान को एक भी बाण नहीं चलाना पड़ा, ये कथा है वाल्मीकि रामायण में भी ये कथा। इस प्रकार से वह बिना लड़े सब राक्षस समाप्त हो गए। तब इसके बाद अब रावण के पास गई, वहां जाकर के वही विलाप करने लगे। पर कोई भी राक्षस ये नहीं पूछता था कि तुम लंका की हो तो उधर क्यों गई थी, क्या करने गई थी। हमने एक बार रामलीला में देखा था, बहुत सुंदर दृश्य था, रावण का दरबार लगा था, सूर्पणखा पहुंची, चिल्ला रही थी, रो रही थी, नाक कान पर फर्स्ट एड कुछ लगाया गया था, रुआ या मलहम पट्टी जो भी की गई थी, पता नहीं उस समय इंजेक्शन दिया जाता था कि नहीं। तो ऐसे रो रो करके खूब विलाप कर रही थी। रामचरितमानस में कहा गया लास्ट एक दोहा में कि तो ही जियत दस कम धर मोर अस गति होए। अरे दस मोड़ी वाला ऐसा भाई, प्रचंड भाई, एक सिर वाला कोई भाई होता तो इसको नहीं सह सकता था, तुम दस सिर रह करके और हमारी दुर्गति को सह रहे हो हमारी दुर्गति को सह रहे हो। तो ही जियत दसकंधर मोर की असगति हो। तो दसकंधर रावण बहुत चिंतित हुआ, लगा कहने कौन है जो मेरे बहन की ये दशा किया है, कौन किया है, पता लगाओ पता लगाओ। तो सूर्पणखा ही बताती है, अयोध्या के राजा दशरथ के वे दोनों पुत्र हैं, और उनके साथ एक स्त्री आई है। तो रावण पूछता है तो क्यों नाक कान काटे, तो कहते झूठ बोलती, कहते हैं कि मैं देखी वो स्त्री बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा कि हमारी भाभी बनेगी, तुम्हारे साथ उसका विवाह हो जाए, इसके लिए मैं उसको फुसला रही थी। तो रावण बहुत खुश हुआ, अच्छा अच्छा, ये बहुत कामी था, संसार में इतना बड़ा गुंडा आज तक तो कोई नहीं हुआ है रावण जैसे, जहां सुनता था कोई सुंदर स्त्री वहां जा करके जीत करके लाता था और उसी दफा में सीता जी का हरण किया और मारा गया। तो रावण प्रसन्न हुआ है बात सुन करके कि अच्छा हमारी पत्नी बनाने के लिए ये सीता को फुसला रही थी, झूठ बोली। वहां क्या कही थी वो तो सब आप लोग जानते हैं, वो राम से विवाह करना चाहती थी और बहुत गलत ढंग से प्रस्ताव रखा। तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान राम से सूर्पणखा कहे कि देखो आज तक मैं 14 भुवन में घूमी लेकिन मेरे लायक पुरुष कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं कुमारी हूं। पर आज तुमको देख करके थोड़ा थोड़ा मन हो गया कि नहीं तुम मेरे योग्य हो। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। भाई लंका में है, बाप कहाँ है, अपना विवाह अपने आप ठीक करने लगी और झूठ बोलती है। कितने लोगों को भ्रष्ट की थी उसकी कोई संख्या नहीं है और कहती है कि आज तक मैं कुमारी हूं। तो भगवान राम ने कहा, भगवान तो बोलने में बहुत प्रवीण है, वे कहे कि देखो जी मैं तो विवाह कर लेता, बहुत मधुर बोल रहे थे, लेकिन देख ही रही हो मेरे साथ एक हमारी पत्नी है और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर द्वार में भी नहीं रहने दिया गया, मैं जंगल में रह रहा हूं, कैसे दो स्त्री का खर्चा मैं कैसे चलाऊंगा, मैं कैसे विवाह कर सकता हूं। ये लक्ष्मण कुमार यहां पर हैं, ये बिना स्त्री के आए हैं, और हाँ इनकी सेवा करोगे ये स्वीकार कर ले तो कोई बात नहीं, हम तो देखो दो स्त्री नहीं रख सकते, हमारे पिताजी तीन स्त्री रखे कि मर ही गए, तो हम इस फजीहत में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये लक्ष्मण जी हैं, ये स्वीकार कर ले तो कर ले। भगवान ने व्यंग किया तो तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली गई। उसने सोचा कि ठीक कह रहे, बड़ा लड़का संकट क्यों ले। तो गई लक्ष्मण जी से कही कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं देखो दो चार मिनट में ही अपने भाग्य क्यों खराब कर रही हो, अरे उनकी पत्नी बनोगी तो अयोध्या की रानी बनो, उनकी रानी बनोगी तुम, इनकी ये राजा हैं अयोध्या के बड़े भाई, तो उनसे विवाह होगा तो रानी बनोगी और मेरे साथ विवाह होगा तो दासी ही रह जाओगी, घाटा लग जाएगा, थोड़ा प्रयास करो उनसे, वो राजा लोग कई स्त्री रखते हैं तुम उनसे विनय करो प्रार्थना करो मान जाएंगे। तो उसने सोचा ठीक ही कह रहा है, मैं क्यों क्षण भर में ही अपना भाग्य खराब करूं। तो आ गई, लगी इतिहास सुनाने, नहीं राजा लोग बहुत विवाह करते हैं, आप ही कर लीजिए और वो लड़का हमको पसंद भी नहीं है ये कह रही है, नहीं आप ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे। भगवान कहे लेकिन हमारे सामने ये बहुत भारी व्यवस्था है, मैं जंगल में कुछ कमा नहीं रहा हूं, मैं कैसे दो स्त्री रख सकता हूं। उसी से प्रयास करो कोई बात नहीं, अरे वो भी तो हमारे भाई ही हैं, वो भी राजा ही है ना, कोई साधारण थोड़े। तो फिर चली गई लक्ष्मण जी के पास, जब दूसरी बार गई कही नहीं आप कर लीजिए, वो नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो तुमसे वही विवाह कर सकता है जो लाज शर्म घोर करके पी गया होगा, समझी, चली है विवाह करने, दर्पण में अपना मुख क्यों नहीं देखती। तो फिर वो राम के पास आ गए, तो राम जी ने कहा कि हमारी व्यवस्था है, हमारी ऑलरेडी स्त्री है। तो उसने सोचा कि ये लड़का जरूर विवाह कर लेगा, इसके लिए काम करना चाहिए कि सीता को खत्म कर दूं, खा जाऊं। उसने विचार किया और जब ही सीता जी को मारने चली तभी भगवान ने नाक पर और कान पर संकेत किया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी म्यान से तलवार लिया और उसी समय नाक कान पोंछ दिए, समाप्त कर दिए। ये वास्तव में भगवान ने राक्षसों को एक चुनौती दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पूरे राक्षसों में एक खबर जाएगी और हमारे विरुद्ध आएंगे लड़ने के लिए, हम आसानी से इस पृथ्वी का भार दूर कर देंगे। ये चुनौती थी। वो गई खरदूषण के पास तो वो लोग आकर के मरे, 14,000 तो एक दिन में खत्म हुए। और इसके बाद फिर सीता का हरण किया रावण ने। हाँ, तो मैं वो कह रहा था राम दरबार में, रामलीला में एक जोकर था, वो दरबारी था रावण का, सब लोग राय दे रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो वो पूछा, वो राधे श्याम रामायण में शायद वो है लाइन, सरकार अभय दान दे तो मैं कुछ कहना चाहता, हमको अभय दान दे रहे हैं, मेरे बोलने पर बुरा नहीं मानेंगे ना। रावण का नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या कारण था सुरपणखा को पंचवटी में जाने का। इससे पूछा जाए सरकार ये पंचवटी में जाने का क्या कारण था, क्यों गई थी। तब तक रावण कहता है चुप, बेचारी इतना कराह रही है, रो रही है और अभी तुम कारण पूछ रहे हो। नाक से इतना खून गिर रहा था, कान दोनों काट लिया गया था। लक्ष्मण जी ने इसलिए किया कि अब कोई भी सुंदर रूप नहीं बना पाएगी और दूसरे पुरुषों को चक्कर में नहीं डाल पाएगी, इसलिए नाक कान काटा गया था। इस प्रकार भगवान ने चुनौती दिया तो स्वतंत्र स्त्री घूमती रहती थी और उसको माध्यम बनाकर भगवान ने पृथ्वी का भार दूर किया, राक्षसों का संहार किया। तो यह भगवान की लीला है, मैं उधर बढ़ गया। अयोध्या से निकलना ऐसे देखने में लगता है कि अरे ये तो महाशोक छा गया अयोध्या में, सब लोग मरने लगे, बेहोश होने लगे, तड़प रहे थे, लेकिन भगवान का वन में जाना यह एक मंगलमय चरित है। एक भक्त ने मुझसे कहा कि महाराज भगवान के जन्म उत्सव पर आप वन गमन की लीला क्यों कह रहे हैं, ये तो दुख की लीला है। लेकिन वास्तव में दुख की लीला नहीं है, भगवान आनंद के साथ जा रहे हैं, बल्कि दुख मिटाने की यह लीला है। क्या हो गया, बानर कर लिया? नहीं, बानर का नहीं चढ़ता है, बानर शाकाहारी होते हैं प्राय। वैसे सीधा साधा नाटक कर रहे थे। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री राम की लीला हो रही थी कि अयोध्या से किस प्रकार निकल रहे हैं। सीता जी से वे भेंट किए, सीता जी को उन्होंने अनुमति दिया, ठीक है तुम चलो वन में, चिंता मत करो। इसके बाद लक्ष्मण जी दौड़े हुए आए, सुनकर के बहुत व्याकुल थे। भगवान ने उनको भी कहा ठीक है, पहले तो शिक्षा दिया, मैं भगवान को चित्रकूट में पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए ये सब बातें बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि भैया तुम यहीं रुको, मेरी माताएं बहुत दुखी हैं, पिताजी मेरे दुख से दुखी हैं, भरत और शत्रुघ्न भी गांव पर नहीं हैं, तो तुम रहो करो सब कर परितोष, नातर तात हो ही बड़ दोष, तुम रहो अयोध्या में और सबको शांति दो, परितोष दो। यहां तक भगवान कहते अन्यथा विपक्ष में बहुत दोष लगेगा, अगर तुम नहीं करते हो ऐसा, मेरे साथ चले जाते हो अयोध्या तो, अरे वन में चले जाते हो तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर नीति कहा कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख भोगती है वह राजा निश्चित मरने के बाद नरक में जाता है, निश्चित, अवसी शब्द भगवान कह रहे हैं। इस समय के जो लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी सुंदर गाड़ियों से घूम रहे हैं, विमान से घूम रहे हैं, इसके बाद जमराज के दूत उनकी जो मरम्मत करेंगे, उस समय यही मनाएंगे बल्कि मैं क्यों इस पद पर था, भगवान का भजन किया होता, सुख से रहा होता तो आज नरक नहीं देखना पड़ा होता। नरक में कितनी दुख की व्यवस्था की गई है ये श्रीमद् भागवतम में पढ़ करके देख लेना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा दुख लिखा गया। उसमें एक लिखा गया पाप करने वालों को किस पाप के कारण किस नरक में गिरना पड़ता है। एक नरक है जिसको अयस्पान नरक कहते हैं, अयस्पान, अयस का अर्थ होता है लोहा, कच्चा लोहा, पान मन पीना। एक ऐसा नरक है जहां पर लाखों भट्टियां लगाई गई हैं लोहा को गर्म करके द्रवीभूत करने के लिए। एक यहाँ टाटा बोकारो क्या है, ऐसा ऐसा लाखों करोड़ों फैक्ट्री वहां है, मतलब लोहा को गर्म करने के लिए, तो लोहा तरल बन जाता है और उन लोग, उन पापियों को उस नरक में ले जाकर को लोहा पिलाया जाता है जो यहाँ शराब पीते हैं, केवल शराब पीने वालों को दंड दिया जाता है, संतोष नहीं होता है पानी पीकर दूध पीकर के। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पीना चालू करते हैं, यहाँ तो शराब पीकर के थोड़े काल तक आनंद आ रहा है, जिस दिन तरल लोहा पीना पड़ेगा तो क्या हो, और मरेंगे नहीं, वो जम यातना शरीर होता है, यातना शरीर में कितना भी कष्ट हो प्राण नहीं निकलता है, कष्ट सौ गुना अनुभव किया जाता है। मरने के बाद एक यातना शरीर दिया जाता है जीवात्मा को, उसमें दुख की अनुभूति सौ गुना होती है उस शरीर में। यहां एक तमाचा मारने पर जितना दुख होगा तो उस शरीर पर सौ गुण, सौ तमाचा मारने इतना दुख होगा एक तमाचा में। वो दुख का अनुभव करने के लिए ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, उसको यातना शरीर कहते हैं। शरीर मरता नहीं है, जीवित रहता है लेकिन खंड खंड हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, दुखी होता है, तो एक दिन नरक में ये दुख भोगना पड़ता है, बताया गया है। शराब पीने वालों को दुख, और सरकारी आदमियों के लिए एक रिजर्व स्पेशल नरक है, भागवत में उसको भी लिखा गया है। क्या नरक है जानते हैं? सूकर मुख नरक एक है, उसमें उसमें गन्ना जैसे पेरे जाते थे पहले के, कल्हुआड़ को आपने देखा होगा, कोल्हू, कई गन्ने एक साथ पकड़ा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार करोड़ों मशीनें हैं वहां, और जो लोग जनता को सताते हैं उन लोगों को ले जाकर वहां ईख की तरह पेरा जाता है, और चेफुआ बन करके निकलते हैं, फिर ठीक होकर के फिर पेरा जाता है। इस तरह से पेरा जाता है। ये कोई हम लोगों की रचना नहीं है भागवतम, ये बहुत काल से है, और भगवान वेदव्यास देव की रचना है। ये बताते हैं कि सरकारी आदमी सब उसमें जाते हैं यदि पाप करते हैं तो, और पुण्य करें तब तो स्वर्ग में जाएंगे। पुण्य का फल अद्भुत होता है, यहाँ की कमाई के अनुसार ही जाना होगा। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करने वाले को वहां तप्त सुरमी नरक में ले जाते हैं, जहां लोहे की मूर्तियां बनाई रहती हैं और उनको हीट दे करके लाल किया रहता है, कनेक्शन जोड़कर बिजली का, चाहे जैसे लाल मूर्ति स्त्री की और लाल मूर्ति पुरुष की। तो जहां व्यभिचार करते हैं, विवाह के अतिरिक्त संबंध करते हैं, उनको वहां अगर पुरुष ने नियम तोड़ा है तो उसको लोहे की लाल स्त्री से आलिंगन कराया जाता है, और जमराज के दूत पीछे से उसको मारते हैं बुलेट जूता पहन करके पीछे से, और आगे ऐसा भांत बंधा रहता है, एक दूसरा दूत खींचता है, चलो चलो आलिंगन करो एंजॉय करो, और उससे आलिंगित होकर के और जलता रहता है लाखों वर्ष तक। इस तरह ये सब सजा है। बुद्धिमान आदमी इन सब बातों को समझ करके पाप से परहेज करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो तो कह देते स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ये कहाँ हो क्या, बस अपनी समझ को ही सब कुछ समझता है। तुम नरक कौन देखा है, नहीं देखे होते इससे क्या, तुम देखोगे उसी को सत्य माना जाएगा, कौन देखा है। बहुत लोग देखे हैं, देखना पड़ता है, और स्वर्ग भी देख करके कई लोग आते रहते। महाराज परीक्षित के समय तक देवता लोग यहां आते रहते थे तो पता लगता था है, लेकिन आज भी वो है भले पता न चले। वो सत्य है, इस बात की मैं यहां व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों को विशेष सावधान होना चाहिए। वास्तव में विशेष सावधान होना चाहिए। भगवान ने एक अवसर दिया है, एक चांस दिया है कि जनता की सेवा कर लो, और प्रकट भी देखा जाए तो देश में या राज्य में सब जगह सेवा की ही बात की जाती है। अमुक सेवा आयोग, ये सेवा आयोग, यह सेवा आयोग, सेवा करने का एक चांस दिया गया है, सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम के विषय में जरा ध्यान दीजिए, अपने भाई से क्या कह रहे हैं, तुम रहो और ठीक से प्रजा की देखभाल करो, अन्यथा अगर प्रजा दुखी होगी तो राजा को नरक में गिरना पड़ता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निरप अवश्य नरक अधिकार, ये भगवान का उद्गार है। लेकिन लक्ष्मण जी सीधा कह दिए कि गुरु पित मात जान कहाऊ कहूं स्वभाव नाथ पति आओ, मैं कुछ नहीं जानता हूं, गुरु को माता पिता को भाई को किसी को भी मैं आपका दास हूं, और मैं आपके बिना जी नहीं सकता। कई प्रकार से विनय के तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, लेकिन जाकर के माता सुमित्रा से अनुमति ले लो, आज्ञा ले लो। तो लक्ष्मण जी गए, माँ ने आज्ञा दिया, अनुमोदन भी किया, बहुत अच्छा बेटा राम की सेवा करो जाकर के वन में, वास्तव में सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही, तुम जाओ वन में सेवा करो। लास्ट आदेश का सार उसने कहा, जेहि न राम बन लहि कलेशु सोईसुत करहु यह उपदेश। बस सारे उपदेशों का सार यह है बेटा राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सुख होना चाहिए। इसका अर्थ है कि तुम जग करके रात दिन सावधान होकर के राम की सेवा करना। राग रोष ईर्षा मदमोह जनी सपने हूं इनके बस हो। तुम किसी दूसरे के राग में मत पड़ना, द्वेष करना, और न रोष न मोह कुछ भी नहीं, रात दिन राम की सेवा करना। मैं धन्य हूं, मैं वास्तविक पुत्रवती हूं। वही स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान राम का भक्त हो। तो मैं वास्तव में अपने को धन्य मानती हूं। भूरि भाग भाजन भयउ तुम समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन राम पद ठाओ। धन्य है मेरी कोख बेटा, तुम इसे जन्म लेकर के और राम के भक्त बन गए। किसी माता के लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसका बेटा भगवान का भक्त बने, यह बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो लक्ष्मण जी चले आए। इसके बाद भगवान गए दशरथ जी के पास, पिताजी से आज्ञा मांगे। दशरथ जी लाखों उपाय किए रोकने का, लेकिन भगवान रुके नहीं। फिर कई कई ने मुनि के उचित वेश ला करके रख दिया, कहा कि राम तुम पहनो ये और निकलो अयोध्या से, ये तुम्हें नहीं कहेंगे जाने के लिए। अगर तुम वास्तविक पुत्र हो इनके, तो इनके धर्म की रक्षा करो और ये पहनो। तब भगवान वहां पर पहने मुनि जनोचित वेश और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ निकलने लगे। अयोध्या में बहुत बड़ा हाहाकार मच गया, यहां तक कि भगवान के जाने के साथ वे सब लोग निकल गए कि हम भी वन में रहेंगे, हम भी मरेंगे, किसी तरह दुख भोगेंगे, हम नहीं रहेंगे अयोध्या। भगवान रोक रहे थे, नहीं रोके लोग, रुकने से कोई रुका नहीं, चले गए। भगवान के साथ ही तमसा नदी के तीर पर चले गए। वो तमसा नदी आज भी है। वहां जाते जाते शाम हो गई। प्रथम वास तमसा भयउ दूसर सुर सरी तीर, ये सुमंत जी महाराज दशरथ को बताएंगे। तमसा नदी के तट पर पहुंचे, दिन भर के कोई खाए नहीं थे और रोए थे दिन भर, व्याकुल थे राम के विरह में। और भगवान की प्रेरणा से, देवताओं की माया से सब लोगों को नींद आ गई रात बीतने पर। कुछ सुमंत जी को दशरथ जी ने भेजा था कि हे मित्र जाओ, राम सीता लक्ष्मण को केवल 4-5 दिन घुमा करके लाओ, या 14 वर्ष के बदले 14 दिन घुमा करके लाओ, तब मैं जी जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा। तो सुमंत जी रथ लेकर के गए थे। तो वहां पहुंचे तमसा नदी के तीर पर, सब लोग सो गए। तो रात में भगवान ने कहा सुमंत जी से कि आप ऐसे कीजिए, हम सीता और लक्ष्मण चढ़ते हैं रथ पर, आप रथ को इस गति से हाकिए कि कहीं रथ का लिख मिले कहीं नहीं मिले, कहीं रथ का चिन्ह मिले कहीं नहीं मिले, कभी अयोध्या की तरफ पहले हाकिए और इधर उधर, जिससे कि लोग हमको पा ना पाए। तो इस तरह से उन्होंने रथ को हाका, भगवान का आदेश था। जब भोर में लोग जगे, सवेरे जगे, देखने लगे रथ का चिन्ह, तो रथ कर चिन्ह कतहु नहीं पावा, रथ का चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं लगता था कि इधर गया इधर गया इधर गया। बाद में ये भगवान की इच्छा थी, सुमन जी रथ को लेकर सीधा गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के पास श्रृंगवेरपुर है, उसके निकट वे पहुंचे। तो वहां पर निषाद राज रहते थे, आज भी यह श्रृंगवेरपुर है, और गंगा के तट पर ही लगभग है। तो वहां पता लगा निषाद राज को, तो वे आए भगवान से मिलने के लिए। वे महाराज दशरथ के अधीन एक राजा जयसिंही थे, महाराज दशरथ उनको बहुत मानते थे। तो भगवान श्री राम को अपने सखा के रूप में वे मानते थे। तो सुने कि राम आए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ, और ये भी सुने कि इनका राज तिलक नहीं हुआ और इनकी सौतेली मां ने इनको वन में जाने को कहा, इसलिए आ रहे हैं। वो आए देखे तो बहुत दुखी हुए, पैर में कोई जूता नहीं और वेश भी बिल्कुल मुनि का वेश और जटा बढ़ी हुई, जटा मतलब केश नहीं संवारे थे, जटा तो बनाएंगे गंगा जी के तट पर, बरगद के दूध द्वारा भगवान ने जटा बनाया अपने केश को, कभी तेल नहीं लगाए 14 वर्ष, कभी कंघी नहीं किए, निर्व्याज धर्म का पालन किया भगवान ने, कोई कपट नहीं, कोई बहाना नहीं, करना है तो करना है, जमीन पर सोना, कंदमूल फल खाना, बलकल वस्त्र पहनना, कभी किसी गांव में न जाना, किसी से कोई सांसारिक चर्चा न करना, ये सब बात भगवान पालन कर रहे थे। तो निषाद राज को बहुत दुख हुआ, बहुत लंबी कथा है, वो लगे कहने कि आप चलिए हमारे घर रहिए, वो भी तो एक छोटे से राजा थे, आप हमारे घर रहिए, आराम से रहिए, सब लोग रहे। उधर क्या हुआ कि तमसा नदी के तट पर जब नहीं मिले भगवान राम, तब ये लोग लौट गए अयोध्या, बहुत दुख के साथ अयोध्या वासी। इधर निषाद राज के पास भगवान कहने लगे कि मित्र, मेरे पिताजी का आदेश है कि मुझे 14 वर्ष वनवासी मुनि व्रत लेकर के रहना है, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता हूं। तब निषाद राज व्यवस्था किए, गंगा जी के किनारे श्रृंगवेरपुर के पास ही गांव से बाहर एक शिशुपा का वृक्ष था, उसके नीचे रात को विश्राम करने के लिए बनाए और कंद मूल फल मंगाए बाहर वाले, कई निषादों को भेज कर कहे कंद मूल फल लाओ, तो उसका भगवान ने भोजन किया और वहीं पर रात को सोए विश्राम किए। निषाद राज और लक्ष्मण जी रात में बहुत बात किए, निषाद राज बहुत रो रहे थे देख करके, वैकुंठ के अधिपति है साक्षात परब्रह्म भगवान और वे धूली में शयन करे कुश पर के घास पर, कुश पर पत्ता पर, तो रोने लगे। तो लक्ष्मण जी उनको बहुत उपदेश कर रहे थे, अब चिंता मत करो, अरे साक्षात हैं, लीला कर रहे हैं और इसीलिए सब लीलाएं कर रहे हैं कि इनको गा करके सुन करके भक्त भव सागर से तर जाएंगे, इनको कोई दुख नहीं है, ये दुख सुख से परे हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तब निषाद राज कुछ धीरज रखे, सवेरे होने पर भगवान ने सुमंत जी को भेजा, कहा कि जाकर के पिताजी से कह दीजिएगा ये बात। सुमंत जी ने कहा कि सीता जी के लिए दशरथ जी ने ये कहा है, आपके लिए ये कहा है, लक्ष्मण जी के लिए ये कहा है, और कम से कम आप नहीं लौट सके तो सीता को लौटा दीजिए, महाराज दशरथ ने कहा है। लेकिन सीता ने कहा कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगी। भगवान ने कहा कि देखो सीता, तुम्हारे लिए पिताजी का संदेश है, तुम लौट जाओ, रथ है ही, रथ पर चले जाओ। लेकिन नहीं, सीता जी नहीं लौटी। सुमंत जी जो चले हैं अयोध्या बिना राम के, तो उनके उस अयोध्या गमन के दृश्य का वर्णन गोस्वामी जी ने बहुत हृदय विदारक किया है, बहुत दुखमय है। तो पहुंचे और इधर तब गोस्वामी जी दूसरी कथा करते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत जी को जबरदस्ती भगवान ने भेजा और इसके बाद गंगा जी के किनारे वे आए। बहुत सिंपल कथा है। वहां आने के बाद ऐसी बात है कि और दिन लक्ष्मण जी मांगते थे, किसी से कुछ मांगना हुआ, मान लीजिए अभी तो मांगने का कोई अवसर नहीं आया, तो भगवान श्रीराम ही स्वयं जा करके तट के पास कहे, ए केवट ओ धीवर, नौका लाओ, मांगी नाओ, न केवट आना। लेकिन केवट लाया नहीं, आना माने आना नहीं, आनयन नहीं किया, नहीं लाया। बार बार भगवान ने कहा ओ धीवर, धीवर कहते हैं संस्कृत में मल्लाह को, ओ नाविक, नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है। आखिर पार करने के लिए ही रखे हो ना यहां नौका, तो बोल नहीं रहा था। भगवान ने दो तीन बार कहा, वो नाविक नौका लाओ, हमें गंगा पार जाना है। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, गीत में अनूप जलोटा जी गाते। वो ऐसे कर रहा था जैसे सुन नहीं रहा है, इसके बाद ध्यान से सुना, वास्तव में महान भगवत भक्त पुरुष था वो। उसे इतना आह्लाद हुआ कि भगवान गंगा जी के तट पर आए हैं तो इनका चरण कमल मैं धोऊंगा, ये मेरा अहो भाग्य होगा। तो भगवान का चरण कमल धोने की लालसा से वो एक अजीब ट्रिक किया। क्या आप कौन हैं? आपका नाम? नाविक पूछता है। अरे भाई मेरा अयोध्या घर है और मैं रहा राजा दशरथ का पुत्र हूं और मेरा नाम है राम। राम? मैं नहीं लाऊंगा नाव। तो सीधा कहा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है नौका पार करने के लिए है लेकिन आपके लिए नहीं है। क्यों, क्या बात है? कही तुम्हार मरम मैं जाना। उसने कहा कि आपका मर मैं जानता हूं, आपका रहस्य मुझसे छिपा हुआ नहीं है। ये कौन सा रहस्य है? भगवान इस तरह से मानो पूछते हैं, कौन सा रहस्य है मेरे विषय में? अरे बहुत दुनिया में विख्यात रहस्य है, मैं जानता हूं। कही तुम्हार मर्म में जाना। क्या मर्म है? नौका पर तो चढ़ाओ। नहीं नहीं, उसी के विषय में तो बता रहा हूं। चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। सब लोग कहते हैं चारों तरफ कि आपके चरण की धूली में मनुष्य बनाने की शक्ति है, ये मर्म मैं जानता। मनुष्य बनाने की शक्ति है कहां सुने होते? सब कही, सब कहते हैं, छिपी हुई बात थोड़े है। सब कहते हैं कि आपके चरण कमल में जो रज है, धूली है, मानुष करनी, मनुष्य बनाने की शक्ति रखती है। ये कैसे, कौन कहता है? तो केवट कहता है, मैं सुना हूं, छुअत शिला भाई नारी सुहाई। मैं सुना कि आप सिद्धाश्रम से बक्सर से जब जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर से आपके चरण धूली छुआ गई, तो पत्थर ही बहुत ब्यूटीफुल नारी बन गई, हमने सुना है। क्या ये असत्य है? तो भगवान अब कैसे कह सकते थे कि असत्य है? अरे सत्य है ना, सत्य है। लेकिन उसका ट्रिक देखिए, अगर ये ऐसा होता है, ये तो बात सत्य है कि गौतम जी की पत्नी अहिल्या साप बस पत्थर हो गई थी, तो भगवान के चरण रज के स्पर्श पे स्त्री हो गई, ये बात सत्य है। लेकिन अयोध्या से यहां तक आने में कितने पत्थर पड़े होंगे? क्या सब स्त्री ही हो गई? ये सोचने की बात है। लेकिन केवट का प्रेम ऐसा था कि उसने सोचा कि इस तरकीब से चरण कमल धोऊंगा। उसने ये भी कहा कि आपका दोष नहीं है, आप में ऐसा दोष कुछ नहीं है, आपके चरण की धूली में दोष है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तो भगवान ने कहा कि हाँ भाई, ये तो घटना हुई थी कि एक बार एक पत्थर को मैं छू दिया, मेरे चरण कमल से टच हो गया, तो एक पत्थर स्त्री के रूप में बन गई थी। हाँ ये बात तो सत्य है। तो उसने कहा, जब पत्थर स्त्री बन गई तो काठ तो और कोमल है। पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे बाप रे बाप, जब पत्थर स्त्री हो गई तो ये काठ तो और कोमल है। अच्छा, वह भी ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए नौका हमारी अगर स्त्री बन जाए, तो अगर हमारी जात में हो, हमारे साथी रहे, तब तो ठीक है, तरनी मुनि घरनी हो जाए। ये नौका भी स्त्री बनेगी तो मुनि की स्त्री हो जाएगी, गौतम जी की स्त्री फिर गौतम जी की स्त्री हो गई। वैसे और भी विनय पत्रिका कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक ही स्त्री का खर्चा चलाना कठिन है, दो दो स्त्री घर में हो जाएगी तो कैसे चलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह से कह रहे हैं कि नौका मुनि की स्त्री बन जाएगी। जब शिला को आप छुए तो वो अरे पहले से ही मुनि की औरत थी, वास्तविकता तो ये है। गौतम जी की पहले से पत्नी थी और बाद में भी चले गए पतिलोक आनंद भरी। तो इस कथा को किस रूप में वो ले रहा है, केवल चरण धोने की लालसा से तरने मुनि घर नहीं हो जाए, बाट परई मरी नाव उड़ाई, मेरी नाव स्त्री हो जाएगी फिर चली जाएगी किसी मुनि के पास, ये रास्ता बंद हो जाएगा, मेरी नाव ही उड़ जाएगी तो फिर अब स्त्री बनकर, वो भी उड़ी थी ना, वो भी स्वर्ग में चली गई गौतम जी के पास, वो सप्तर्षियों में एक हैं, तो उनके पास चली गई, तो मेरी नाव उड़ा ये भी उड़ जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, इसी नौका से ही मैं सारे परिवार का पालन कर रहा हूं, पात भरी मछरी सकल सुत वारे वारे केवट की जात कछु, मुझे तो याद नहीं ऐसे कह रहा है। तो यही प्रतिपालन सब परिवार, सारे परिवार का पालन पोषण इसी से होता है, नौका चलाता हूँ, नहीं जानो कछु और खबर कबार, और कोई कारोबार नहीं है मेरा और कोई काम धंधा नहीं है, केवल नौका है। तो मैं बहुत डर रहा हूँ, मैं आपको कमर भर पानी दिखा देता हूँ, वहां से चले जाइए, मैं पानी जानता हूँ कहाँ कम है वहां से पार हो जाइए, लेकिन हमारा काम धंधा बंद मत कीजिए। तो भगवान ने कहा अरे भाई वहां कैसे सीता कैसे पार करेगी। भगवान इस तरह से परवस्ता कर रहे, तो कैसे सीता पार करेगी, ये तो बहुत कठिन काम है, नहीं नहीं हम नौका से ही जाएंगे, कुछ उपाय करो। केवट कहता है एक उपाय है, अगर आपके चरण से धूलि का अपसारण हो जाए, धूलि दूर हो जाए, तब हमें भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपके चरणों के धूलि में शक्ति है, तो धूलि से डर लगता है। तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं मोहिपद पदुम पखारम कहूं, अगर आप अवश्य इसी नाव से ही पार होना चाहते हैं तो मुझे अपना चरण कमल पखारने के लिए कहिए, चरण पद में पखारने के लिए कहिए, धोने के लिए कहिए। केवट की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी कुछ भाव तरेर रहे थे, उनको क्रोध हो रहा था कि इतनी गुस्ताखी क्यों कर रहा है, सीधा साधा इसको पार करना चाहिए, एक सेवक है ये। केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब सची कहो। मैं चरण कमल धो करके चढ़ाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है, और आप ये भी चिंता मत कीजिए मैं पार करूंगा, आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, खिवाई नहीं लूंगा, आपकी और आपके बाप दशरथ की शपथ खा करके कहता हूं, सब साची बात कहता हूं, किसी भी तरह से मैं बिना चरण धोए नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। यहां तक कि लक्ष्मण जी अगर बाण भी मार दें मर जाऊंगा लेकिन फिर भी चरण धोए पार नहीं करूंगा। बरु तीर मारहुं लखन पै जब लगी न पाय पखारी हों तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हम। यदि लक्ष्मण जी बाण भी चला दे हमको, मार भी दे, लेकिन जब तक पाए जब तक चरण प्रक्षालन नहीं कर लूंगा तब तक मैं हे तुलसीदास जी के स्वामी मैं आपको पार नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा। देखिए भगवान विनय कर रहे हैं केवट से गंगा पार करने के लिए। कौन प्रभु निहोरा कर रहे हैं? जिन्होंने इस विश्व को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, दो पग में ही नाप लिया था पूरे ब्रह्मांड को, वे प्रभु केवट से निहोरा कर रहे हैं। बार बार विनती कर रहे हैं, लाओ लाओ लाओ, कह रहे नहीं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए ही है, मार दे मर जाऊंगा, लेकिन मैं इतना खतरनाक काम नहीं कर सकता, अपने परिवार को मार दूं कमाई बिना, ये सब खाने बिना मर जाए, मेरी नाव चली जाए, ये सब नहीं कर सकता। कुछ है महात्मा लोग कथा कहते हैं कि क्षीर सागर में एक बार भगवान शेष सज्जा पर सोए थे, तो कछुआ भगवान के चरण को देख करके छूना चाहता था, तो शेष नाग फुफकार मार रहे थे, हटा दियो, डर करके भाग गया। और लक्ष्मी जी भी नहीं चाहती थी कि छुए। यहां पर भाव दिया गया लक्ष्मी जरूर कुछ क्रोध में हो रहे हैं राम से ऐसी बात करने पर, तो इसी पर वो कह रहा है, उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, जो भी सत्य हो स्वाभाविक है। तो कहता है कि ये लक्ष्मण जी तीर भी मार दें तब भी मैं बिना चढ़ाए नहीं, बिना चरण धोए नहीं चढ़ा सकता। तो भगवान ने हंस करके कहा, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी नाव बची रहे वो काम करो, जैसे नाव बची रहे। उसने कहा ठीक है, मैं इसके लिए टेस्ट पहले करना चाहता हूं। वो कठौता में पानी लाया, काठ के बर्तन में, राम जी को यह दिखा रहा है कि मैं टेस्ट कर रहा हूं, अगर इसको छुआने से काठ का बर्तन अगर नारी नहीं बना तब मुझे कुछ आश्वासन होगा। अपने मन में सोच, तो कठौता में पानी भर करके लाया, अथवा उसके पास काठ का ही बर्तन था जो नौका पर भार न बढ़ावे, तो पीतल आदि का बर्तन रखने पर भार ज्यादा होता, और वैसे उसके पास ठिकाना भी नहीं था, कुछ था भी नहीं बर्तन, तो काठ के बर्तन में लाया और भगवान के चरण को पखारने लगा बहुत आनंद के साथ, आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा, चरण पखारने लगा। पहले बहुत कलात्मक ढंग से चरण के तलवे को धोने लगा और देर कर रहा था, भगवान का अब हो गया, नहीं नहीं नहीं, उंगली के इधर उधर संधि में धूली कहीं फंसी होगी, कहीं भी एक रज भी है तो बहुत खतरनाक है। पहले इसको जब चरण पखाने लगा केवट, तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर और केवट के ऊपर, और कहने लगे कि यही सम पुण्य पुंज को ना बरस समन सुमन सुर सकल सिंहा, यही सम पुण्य पुंज को ना, धारावाहिक फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग विमान से आकर के, और कहने लगे कि इसके समान पुण्य का सुकृत का पुंज इस जगत में कोई नहीं हुआ आज तक, अद्भुत सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान कह रहे हैं अब हो गया ना, नहीं इधर फंसी है धूली, इधर फंसी है, इधर फंसी, कई प्रकार से मन भर करके भगवान के चरण पद्म को पखारा। उसके बाद कहा कि हाँ ठीक, पद पखारी जल पान करी, चरण कमल धो करके और फिर जल पिया, पानी तो काफी था तो उसको पिया, आप सहित परिवार स्वयं पिया और जो बच्चे थे पत्नी थी सबको दिया पीने के लिए, आप सहित परिवार परिवार के साथ पिया, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय उलई पार। इसके बाद आनंद के साथ भगवान को ले गया, भगवान चढ़े, सीता जी को पहले चढ़ाए, सीता जी को पहले चढ़ा, ये वास्तव में साइंस है, ये सामाजिक शास्त्र है, कहीं भी कहीं जाना हो तो स्त्री को पहले चढ़ाना चाहिए, यदि आप छूट जाते हैं प्लेटफार्म पर तो किसी न किसी उपाय से पकड़ लेंगे, लेकिन स्त्री छूट जाएगी तो बेचारी वो फिर एक कथाकार ऐसे कह रहे थे, ये आप चलती गाड़ी में ही मान लीजिए थोड़ा तेज हो जाए तो चढ़ सकते हैं, लेकिन स्त्री नहीं चढ़ पाएगी। तो भगवान पहले सीता जी को चढ़ाए और इसके बाद चढ़े लक्ष्मण जी पीछे से चढ़। तो एक बात विशेष कारण को स्वामी जी की पितर पार करी प्रभु ही पुनि गय मुदित लई पार, पहले वो पितरों को पार कर दिया, मतलब उसके इस कार्य से, इसके शुभ कर्म से, भक्ति से उसके पितर पार हो गए, भव समुद्र पार हो गए, कहीं दुर्गति में गिरे होंगे वे सब लोग भी पार हो गए। भगवान के चरण कमल पखारने का सौभाग्य बहुत मुश्किल है, इस सौभाग्य से उसके पितर सब पार हो गए, अर्थात केवल केवल अपने परिवार को, वर्तमान परिवार को नहीं नहीं तारा, कई पीढ़ी के लोगों को भी तार दिया, पितरों को भी तार दिया। भगवान की भक्ति से ही पितरों का उद्धार होता है। तो वहां गए, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सीए राम गुह लखन समेता। तो फिर जा करके पार हो करके गंगा जी के बालू पर सब खड़े हुए, कौन कौन, सीता, राम, निषाद राज और लक्ष्मण, और इसके बाद तब केवट उतरा। ये लोग चार लोग पहले उतर करके खड़े हो गए। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। फिर श्री भगवान को बहुत संकोच हुआ, इस बेचारे को मैंने कुछ दिया नहीं। ये भगवान का स्वभाव होता है, वो बहुत देते हैं फिर भी उसको बहुत थोड़ा मानते हैं कि मैंने बहुत कम दिया, बहुत कम दिया। अभी आप सुन रहे हैं पितर सब पार हो गए, कर्म बंधन से मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए। तो भगवान सोचने लगे मैं इसको कुछ नहीं दिया, केवट उतर करके जब दंडवत प्रणाम किया, भगवान सोचने लगे कि इसको मैं कुछ दिया नहीं, बेचारे की जीविका है नौका चलाना, उसे कुछ पैसा लेना और परिवार पोषना, मैंने कुछ दिया नहीं। भगवान के मुख कमल को देख करके सीता जी तुरंत समझ गई, पिए ही किस ये जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने प्रियतम के मन की बात जानती हैं कि इस समय क्या सोच रहे हैं, तुरंत समझ गए कि केवट को कुछ देना चाहते हैं, संकोच में पड़े हुए। तो उन्होंने अपने आंचल से छिपा करके मुद्री निकाल लिया और भगवान के हाथ में धीरे से पकड़ा दिया, उसको केवट नहीं देखा। तो भगवान लेकर के प्रसन्न हुए और कहे, कहयु कृपाल ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने उस सोने की मुद्रिका को लेकर के केवट को देना चालू किया। तुम लोग बहुत आग्रह किया कि तुम्हारी जीविका है, तुम इस तरह से अगर फ्री सबको चढ़ाओगे तो कैसे तुम्हारा परिवार चलेगा, ले लो ले लो ले लो। देखिए भगवान श्री राम का आदर्श जीवन, इस तरह से किसी गरीब के जीविका को अपने ध्यान में रखना, ये कितनी बड़ी बात है। आजकल के आदमी जो धनी मानी है चाहे अच्छे हैं, अगर ऐसे पर तो केवट को डांट करके कहेंगे चलो और उतर करके चल देंगे, फिर पूछेंगे नहीं कि तुमको मिला नहीं मिला। अगर वो मांगे कि सरकार हमको एक रुपया दीजिए, आए इतना पैसा कमाते हो क्या होता है, चलो, इस तरह की भाषा बोलते हैं। सीखना चाहिए भगवान श्री राम से। इसी पाटलिपुत्र में चाणक्य पंडित हुए थे, उनके विषय में हमने सुना है कि उनसे मिलने के लिए सिकंदर का मंत्री आया या सेनापति आया, चाणक्य पंडित जी से, जो महाराज चंद्रगुप्त के राजमंत्री महामंत्री थे। तो उस समय वे अपने ऑफिस में सरकारी काम देख रहे थे, कुछ कागजात देख रहे थे चाणक्य पंडित जी। तो एक वैसा ही दीपक रखा हुआ था, एक दीपक जलाए थे, शाम हो गई थी, तो आया मिलने के लिए वह सिकंदर का प्रतिनिधि, अलेक्जेंडर का जो विश्व विजयी था, आकर के इसी पटना क्षेत्र में उसकी हार हुई थी, यहीं पर उसने अपना घुटना टेका था। वो चाणक पंडित के नीति के कारण, तो इस प्रकार जब चाणक पंडित से मिलने के लिए आया, वो एक दीपक में कुछ काम कर रहे थे, जो उसके बैठने पर उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया, एक दूसरा दीपक जला लिया और उस दीपक को बुझा दिया, तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया वो प्रतिनिधि कि आखिर इस दीपक में भी हम लोग बैठ कर बात कर सकते थे, तो उसको क्यों बुझा दिए, नया क्यों जला लिए दूसरा दीपक। तो उन्होंने कहा कि उस दीपक के प्रकाश में मैं सरकारी काम देख रहा था, राजा का काम देख रहा था, तो उसमें सरकारी तेल लगता है, उस दीपक में सरकारी पैसा लगता है, और मैं आपके साथ व्यक्तिगत बात करने जा रहा हूं, तो इसमें मेरे वेतन का पैसा लगता है। ये दो दीपक रखे थे, दीपक भी जला रहे, तो प्राइवेट बात जो है व्यक्तिगत, तो अपने वेतन का लगाएंगे, सरकार का नहीं, राजा का पैसा इसमें नहीं लगेगा, राजा का पैसा जब राजा का काम करेंगे तब लगेगा। आजकल के मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए, कितना पवित्र जीवन हो जाएगा, कितना बड़ा देश पर जो भार है ये चलाने का कितना कम हो सकता है, अपनी आवश्यकताएं इतनी अधिक बताते जाते हैं लोग, बताते जा रहे हैं, और जनता पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे धीरे। ये सब बातें जो है भगवान राम की एक साधारण सी लीला है कि केवट को निहोरा कर रहे हैं लेने के लिए उतराई, ये समाज को कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है। चाहे चाणक्य पंडित का इस तरह अपने वेतन का दीपक जलाना, वेतन के पैसे का दीपक और सरकारी कोष का पैसा, दीपक भी फालतू नहीं जला सकते थे। ये सब एटीट्यूड दिए गए हैं, सब गुण है, वास्तव में मनुष्य सीख सकता है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हमने पढ़ा था एक बार जो लाल बहादुर शास्त्री से, जब वो भारत के रेल मंत्री थे, तो उस समय उनकी लड़की की लड़के या कोई ऐसी बच्ची थी जिसकी स्लेट फूट गई थी, स्लेट शुरू शुरू बच्चे लिखते हैं, तो उसने कहा कि पिताजी हमारी स्लेट फूटी हुई है, तो कहे ठीक है बेटी, अगले महीने में जब तलब मिलेगा तब दूंगा, अगले महीने में जब मुझे मासिक वेतन मिलेगा तो मैं उसमें से खरीदूंगा स्लेट। इस प्रकार के लोग भी भारतवर्ष में हुए हैं, अभी वर्तमान की ही बात है, बहुत वर्ष पहले की नहीं है। यह भगवान राम के जीवन में है, किसी गरीब को सहारा देना चाहिए, न कि उसके ऊपर और हम थोड़ा सा भार बढ़ावे, हम थोड़ा सा भार बढ़ावे, भगवान विनय निहोरा करने लगे, कहे कृपाल ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट भगवान के चरणों में गिर गया, व्याकुल हो गया और कहने लगा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दवा, हे नाथ आज मुझको कौन सी वस्तु संसार में है जो नहीं मिल गई, मुझे सारा पुरुषार्थ मिल गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया, हमारे जीवन के सारे दोष दुख दरिद्रता ये सब मिट गए, और दावा मत दुख सारी व्याकुलता जलन सब कुछ मिल गया, मिट गया। बहुत काल में किन मजूरी, आज दिन विधि बनी फलपूरी, बहुत काल तक मैंने मजदूरी किया, लेकिन ईश्वर ने, ब्रह्मा ने आज मुझे पूरा पूरा मजूरी दिया, मैं आपका दर्शन किया, आपका चरण कमल पखारा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह मोर तोरे, हे नाथ अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, कि आप हमें अपना एक सेवक मानते रहे। भगवान बार बार विनय कर रहे थे ले लो ले लो, तो उसने कहा कि एक एक बात मैं ले लूंगा, ठीक है। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, और भी चलाकी किया। अब वन से लौटते समय जो देंगे ले लूंगा, ये अभी रखिए, आपके पास ऐसे भी कुछ नहीं है, जंगल में जरूरत पड़ जाएगी, आप जाए फिरती बार जो देंगे ले लूंगा। इसका मतलब कि आप जरूर आइए लौटते समय भी, ये प्रार्थना थी, लौटते समय आइए जो दीजिएगा हम ले लेंगे। और ऐसा वर्णन है कि भगवान जब चले पुष्पक विमान से तो केवट के उस स्थान पर वे उतरे थे और गंगा जी में फिर स्नान किए और वहां से चले थे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले। तो लक्ष्मण जी भी बार बार कहे नहीं ले लो ले लो ले लो, सीता जी कहने लगी ले लो, लेकिन केवट कुछ भी नहीं लिया। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा किन्ह करुणा यतन भगत विमल वरदे। तो भगवान ने निर्मल भक्ति का वर दे करके उसको विदा किया। इसके बाद भगवान श्री राम गंगा जी के उस पार हो करके पूजन किए, स्नान किए उस पार जाकर के, सवेरे का समय था, इस पार स्नान नहीं किए, उधर स्नान किए और पार्थिव पूजन किए और भगवान शिव को प्रणाम किए वहीं से मन ही मन। इसके बाद सीता जी गंगा जी की पूजा करने लगी। सिए सुर सरिहिं कहउ कर जोरी। सीता जी गंगा जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, मा तू मनोरथ पुरउ बमोरी। हे माँ गंगा, तो मेरा मनोरथ पूरा करो। श्री सीता जी विनय कर रहे हैं गंगा जी से, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। हे माँ, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पति और देवर के साथ वनवास पूरा करके कुशल पूर्वक यहाँ आऊं और फिर मैं तुम्हारी पूजा करूं। पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आई करूं जही पूजा तोरी। यह है वैदिक भारतीय निष्ठा गंगा जी के प्रति। सीता जी विनय कर रही हैं, अद्भुत प्रसंग है, और मांग रही हैं गंगा जी से आंचल हाथ में लेकर के, आंचल पसार करके मांग रहे हैं, पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल अपने पुरुषार्थ से ही कुशल या मंगल नहीं होता है, बहुत लोगों का आशीर्वाद चाहिए उसमें, देवताओं का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद, इसकी कामना करनी चाहिए। गंगा जी एक देवी हैं जो वास्तव में वैकुंठ से आई हुई हैं इस धरातल पर, और अनादि काल से भक्तों के मनोरथ को पूरा करती रहती हैं। विनय न निर्मल पानी जय गंगा महारानी। तो कितने दीनहीनों को इन्होंने उनका घर भर दिया, कितने पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र दिया गंगा जी ने, अनादिकाल से दे ही रही हैं। गंगा जी से इस प्रकार का विनय बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं अपने पति और देवर के साथ कुशल से लौटूं। बहुत भयावह जगह पर जा रही है, वन में जा रही है जहां राक्षस रहते हैं और कई हिंसक जीव रहते हैं, कई प्रकार का दुख होगा, लेकिन गंगा जी के प्रताप से, गंगा जी के वरदान से कुशल लौटेगी। ये तो कुशलता की साक्षात देवी हैं सीता जी, लेकिन फिर भी मनुष्य लीला में वे मांग रही हैं गंगा जी से। जब सीता जी गंगा जी से मांग रही हैं तो कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसा पुरुष होगा जो गंगा जी से आशीर्वाद नहीं मांगेगा। गंगा जी के आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। पतिदेवर संकुशल बहोरी आई करो जहि पूजा तोरी। सीता जी के इस वचन को सुन करके गंगा जी के लहरों से आवाज निकली मनुष्य की भाषा में, सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही तव प्रभाव जग विदित न केही। हे श्री राम प्रिया वैदेही, राजा विदेह की पुत्री, तुम्हारा प्रभाव किसको विदित नहीं है, आप साक्षात लक्ष्मी हैं और आपकी कृपा की ही कहीं रुख देखते हैं लोकपाल लोग। लोकप हो ही बिलोकप तोरे, तो ही सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे। आठों लोकपाल तुम्हारी कृपा की याचना करते हैं और सारी सिद्धियां तुमको हाथ जोड़ करके सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन मही दिन बहाय। तुमने जो हमारी विनय की, हमको वास्तव में तुमने बढ़ाई दिया है, कृपा किया है, फिर भी हे देवी अपनी वाणी को सत्य करने के लिए मैं जरूर आशीर्वाद दूंगी। अपनी वाणी हमारी सत्य हो, वो तो पूर्व सहित तुम में है ही, लेकिन लोग कहेंगे कि गंगा जी ने आशीर्वाद दिया इसलिए ऐसा हुआ। तो अपनी वाणी को सत्य करने के लिए, सफल करने के लिए, तदपि देवी मैं देवी आशीषा सफल होने हित निजवागीसा, मैं अपनी वाणी को सफल होने के लिए आशीर्वाद दूंगी। तो गंगा जी आशीर्वाद दे रही हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलाय पूज ही सब मन कामना सुजस रहे ही जग छाय। गंगा जी आशीर्वाद दे रही हैं अपने प्राणनाथ श्री राम और देवर लक्ष्मण जी के साथ, तुम कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश सारे जगत में छाएगा। इस प्रकार गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। गंग वचन सुनी मंगल मूला मुदित सीय सुर सरी अनुकूला। इस प्रकार जब गंगा जी के वचन को सीता जी ने सुना तो सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई कि गंगा जी की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, तो बहुत प्रसन्न हुई। वो बार बार सोच रहे थे कि गंगा जी अनुकूल हैं, गंगा जी अनुकूल। मुदित सीय सुर सरी अनुकूला। तब भगवान श्री राम ने निषाद राज को कहा कि हे मित्र, तुम बहुत दूर चले आए हो, चलो चलो तुम लौट जाओ। निषाद राज ने कहा कि नहीं, अभी चार दिन और रहने दीजिए, मैं कुछ सेवा करके आपको रास्ता दिखा करके लौट जाऊंगा। तो ये प्रयागराज तक चले आए, लौटे नहीं। प्रयागराज से भी आगे गए निषाद राज एक दिन, उसके बाद लौटे थे। ये प्रसंग है आगे। हाँ, तो इसके बाद भगवान श्री राम गंगा जी के किनारे किनारे मतलब पथ से प्रयागराज आए। प्रयागराज को देखकर भगवान ने प्रणाम किया। प्रयागराज तीन नदियों के संगम स्थान है, गंगा सरस्वती और जमुना जी। बहुत महत्व है प्रयागराज का, यहाँ का वर्णन काफी किया गया है।